न्याय ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 20। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुभात्मने नमः। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वैछायाणं नमो लोए कवसाहूणं नमिऊणने मिचंदं असहाय परक्रमं महावीरं बंधुदय सत्तजुत्तं ओभादेशे भवं मोक्षं बंधवुदय सत्तासहित अहित कर्म करिनाय वये ज्ञान परकाशमय नमो तासु हुइगा। आचार्य श्री निमिषंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड धुंधारी भाषा में लिखी है। उसी का यह हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं और पृष्ठ है 106। अभी अपना प्रकरण गुणस्थानों में विच्छित्ति का चलेगा। हमने देखा था कि कौन से पहले हमने प्रकृतियों का हिसाब देखा था।
वो कल एक बात रही गई थी।
हाँ,
गुणस्थान के नाम पूछने के सबसे कौन बताना चाहेगा?
गुणस्थानों के नाम तेजल आप बताएंगे? कल नहीं थे ना? हाँ हाँ बोलो बोलो।
मिथ्यात्व,
सासादन, मिश्र, प्रमत्त संयत कहो या विरत कहो, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, कितने हुए? सातवें। हाँ,
अपूर्वकरण,
हाँ,
अनिरुद्धिकरण,
हाँ,
उच्च संप्राय,
हाँ,
उपशांत मोह,
कोई भी कहो, उपशांत मोह, उपशांत मोह कहो तो क्षीण मोह कहो। हाँ हाँ,
अयोगी के लिए
बहुत अच्छा। नैन्सी भाई भी गिन रहे हैं तो आपने भी याद करके लाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आप कहेंगे। हाँ 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 हाँ, कोई कोई बात नहीं,
बिना देखे बोलो।
हाँ 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 उपशांत मोह। हाँ, तेरवा सेव केवली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ट्राई।
खाली एक सूक्ष्म में आटे गए, सूक्ष्म है। बहुत अच्छा। अभी किसको याद नहीं हाथ उठावे, सबको याद हो गया ऐसा समझते हैं। भाई आपको याद है क्या? हाँ बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ो।
चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा। क्योंकि गुणस्थानों में अभी ये सभी बातें, यहाँ से गुणस्थानों की चर्चा चलेगी, कहाँ कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कहाँ कितने का उदय होता है, उसकी बातें चलेगी। तो गुणस्थान ही नहीं पता होगा तो आगे क्या चल रहा है, इधर से जा रहे चलेंगे ना माथे के ऊपर से। अभी यहाँ कल हमने ये बात देखी थी कि कौन से गुणस्थानों में कितनी प्रकृतियां बंध योग्य है। टोटल प्रकृतियां 148 देखी थी, उसमें से हमने 26 निकाल दी, अभेद रूप से कर दी, निकाल दिए ने है उसमें गर्भित कर दी, तो कितनी बताई? 122। उसमें से बंध होने योग्य 120 है, बंध हो सर्वत्र, मिथ्यात्व की बात नहीं, बंधने वाली कितनी है यथा योग्य तो 120 है। क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व ये बनती नहीं है, मिथ्यात्व में से ये दो प्रकृतियां प्रथम उपशम के काल में तैयार होती है, बाद में भी वो जब तक सम्यक तो उसमें से बनती रहती है। तो ये जो बंध योग्य 120 प्रकृतियां हैं उसमें से पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं है, क्योंकि वो किसके बनती है सुशीला बेन, सम्यक दृष्टि के कौन से गुण स्थान से कौन से? वो तो प्रारंभ की बात, अपने प्रारंभ की बात की, परंतु किसको बनती है अगर पूछेंगे तो चार से आठवें के छठे भाग तक। और आहार दिग भी पहले गुणस्थान वाले को नहीं बनती, वो किसके बनती है मिली भाई? सातवें आठवें वाले, यानी छठे तक वो अबंध में गिनेंगे उसको। बात ख्याल में आई? तो पहले गुणस्थान में बंध योग्य कितनी? तो 117 एट ए टाइम किसी को नहीं बनती है, परंतु अलग अलग जीव उसका बंद कर सकते हैं उसकी अपेक्षा से। ये बात चलेगी नाना जीव उनकी अपेक्षा कहेंगे, या एक जीव की अपेक्षा कहने तो कभी ना कभी वो बांध सकता है नित्या तो गुणस्थान। अब यहाँ कौन से प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति, अभी विच्छित्ति का प्रकरण चलेगा। विच्छित्ति का अर्थ होता है कि उस गुणस्थान में ही वो बंधने योग्य है, ऊपर कहीं भी नहीं बनती ऊपर के गुणस्थानों में। तो कहेंगे उस पर्टिकुलर गुणस्थाने में उसकी बंध की विच्छित्ति हुई। हाँ, लास्ट तक, इसका अर्थ क्या? उसका अर्थ नहीं कि वो वो उसका लास्ट स्टॉप। तो अभी कौन से गुणस्थान में कितनी विच्छित्ति होती है? तो पहले में कितनी, दूसरे में कितनी? हमने कल गाथा पढ़ी थी, तो पहले में कितनी देखी थी हमने? बोलो 16, दूसरे में 25, तीसरे में यहाँ लिखा था नभ, नभ यानी आकाश, आकाश यानी 0 शून्य, फिर 10, फिर 4, चार कहाँ देखी थी? पांचवे में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में है तो 36, और उसका विभाजन करने 2, 30 और 4, नौवे में 5, दसवें में 16, 10 नहीं 16 यार, प्रकृतियों का बंध होता था उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होगा, तो कहेंगे 16 की बंध विच्छित्ति वहीं पर हो गई। फिर 13वें में 1 जो बनती थी सात आवेदी, वो भी बंधना रुक जाएगा। अभी हम उसके नाम वगैरह, वो तो विस्तार से भी यहाँ से प्रकरण चलेगा। तो कल हमने 94 नंबर की गाथा पढ़ी थी, उसको फिर पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें केवल संख्या क्रम से लिखी है, वो हमें समझना है पहले गुणस्थान में कितनी बंध विच्छित्ति, दूसरे में कितनी है, क्योंकि उन्होंने क्रम से बता दिए। देखो फिर पढ़ेंगे, अभी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा जो हमें हमने संख्या देखी है वही यहाँ बता रहे हैं। सोलह,
संस्कृति पढ़ो
नहीं अभी शुरू किए। सोल सपन विसनभम दस चौचक्के कबंध वो छिन्ना दुगति सचदुर पुवे पण सोलस जोगिनो एको षोडश पंचविंशति नभ दश सहस्र षडे कैकं बंध व्युच्छिन्ना द्विकेत्रिंशच्चतस्रः अपूर्वे पंचषोडश योगिन एका। टीका, मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृतियां बंध से विच्छित्ति रूप होती है, वहां वो बंध योग्य है, ऊपर कहीं भी उनका बंध नहीं पाया जाएगा, तो उसको कहेंगे बंध की विच्छित्ति। देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि मिथ्या दृष्टि जीव है, कोई साता वेदनी का बंध कर रहा है, कोई अस्था का, जो शुभ परिणाम करता है तो साता वेदनी बंधेगी, शुभ नाम कर्म बंधेगे, उच्च गोत्र भी बंधेगा, और जब पाप परिणाम अशुभ परिणाम कर रहा है तो असाता वेदनी बंधेगी, अशुभ नाम बंधेगे, नीच गोत्र बंधेगा, अशुभ आयु नरकायु बंधेगी। तो क्या हम उसको बंध विच्छित्ति कह सकते हैं? ये प्रश्न, जब तक शुभ बंध कर रहा है तब तक अशुभ का बंध नहीं कर रहा है वो जीव उस काल में, तो उसको बंध विच्छित्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अंतर्मूर्त काल तक उसने नहीं बांधा है कायम के लिए। तो जब तक मिथ्यात्व चल रहा है तब तक कभी साता बांधेगा, कभी असाता बांधेगा, कभी शुभ प्रकृति बांधेगा, कभी अशुभ, वो तो पलटते रहेगा, उसको बंध विच्छित्ति नहीं कहेंगे। तो बंध विच्छित्ति कब कहेंगे? जब ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा और इसमें से विशिष्ट प्रकृतियां बंधने से ही रुकेगी, तब हम उसको कहेंगे उसकी बंध की विच्छित्ति हुई। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का बंध चल रहा है, तो वेरिएशन कहाँ हो रहा है? पुण्य और पाप प्रकृति में थोड़ी बहुत, सभी भी नहीं, उसमें से बहुत सारी पाप भी बन रही है, तो उसको बंध विच्छित्ति नहीं कहेंगे। ये बात है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी प्रकृतियां है, कितनी कितनी है। मिथ्यात्व में कितनी देखी अभी तेजल? 16। मिथ्यात्व में तो इनका बंध है, सासादन आदि ऊपर के गुणस्थानों में इनका बंधन नहीं है। अर्थ ख्याल में आ रहा है? दूसरे में भी इनका बंधन है, तीसरे में, चौथे में, कहीं पर भी नहीं, मात्र मिथ्यात्व में ही इनका बंध है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे नरकायु है, नरक गति वो कहाँ बनती है, तो पहले गुणस्थान वाले को बनती है, ऊपर कहीं नहीं बनती है। एक इंद्रिय संबंधी जो कोई प्रकृतियां वो यहीं पर बनेगी। इसी तरह सर्वत्र विच्छित्ति का स्वरूप जानना, जब चौथे गुणस्थान की विच्छित्ति कहेंगे कोई भी जो पर्टिकुलर, जैसे अप्रत्याख्यानावरण कर्म जो है चौथे गुणस्थान में बंध की विच्छित्ति, उसका अर्थ क्या है? पहले वाले को भी बनती है, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को भी, चौथे वाले को, चौथे तक बनती है, ऊपर नहीं बनती, तो उसको कहेंगे चौथे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। ये ख्याल में आया तो आगे की बात सब आसान है। विच्छित्ति का अर्थ ख्याल में आया तो आगे की बात अभी सरल है। सासादन में 25 प्रकृतियां विच्छित्ति रूप होती है। मिश्र में शून्य कहने से विच्छित्ति का अभाव है, यानी जितनी बनती थी उतनी आगे की, यानी जितनी सासादन वाले को बनती थी उसमें इतनी भी बंधेगी, यहाँ पर भी बंधेगी, उसमें से उल्टा कुछ कम बंधेगी इस गुणस्थान, पर यहाँ कुछ बंध का अभाव नहीं होगा, यहाँ पर तो विच्छित्ति नहीं होती, कुछ विच्छित्ति शून्य है। असंयत में 10। अब चार गुणस्थानों के हमको बताना है, नितिन भाई बोलो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। बहुत अच्छा, बोलो मिली भाई। हाँ, चौथे गुणस्थान में 10। तो कोई जीव पहले गुणस्थान में से चौथे में गया तो उसके कितनी प्रकृतियों की कैसे?
पहले
की 16, दूसरे की 25, तीसरे की 0, तो सब मिलकर कितनी हुई? 41 प्रकृतियों के बंध विच्छित्ति हुई। कोई जीव पहले गुणस्थान से डायरेक्ट पांचवे में गया तो उसके कितने प्रकृतियों की बंध की विच्छित्ति हुई? बोलो बापा बोलो। हाँ हाँ, कैसे? पहले की हमने 41, हाँ 16, दूसरे के 25, तीसरे के 0, चौथे के 10, तो कितनी हो गई टोटल? 51। चौथे में जो गया है उसके पहले दूसरे और तीसरे में जो बंध योग्य थी वो यहाँ नहीं बन रही है, तो हम कहेंगे 51 की बंध विच्छित्ति हुई। वो पांचवे में जाने वाले को वो 10 उसमें लेना है, क्योंकि चौथे में वो बनती है, जो चौथे में गया उसके लिए 41, मैंने वो पांचवे की अपेक्षा 51 बताया। चौथे में जो गया है उसके लिए पहले दूसरे तीसरे की गिनना, क्योंकि चौथे में तो वो तो लास्ट में कहेंगे, वो तो चौथे में तो बंध है, जो पांचवे में गया है डायरेक्ट उसके कितने कई बंध विच्छित्ति हुई? 51 की बंध विच्छित्ति। ख्याल में आती है सुशीला बेन? अब वो डायरेक्ट सातवें में जाने वाले के कितने का बंध नहीं होगा, पहले से छठे तक के सभी बंध विच्छित्ति की टोटल करो, उसको कहेंगे। यानी कैसे गिनना इसका ख्याल में आया है ये बात? अभी आगे बढ़ेंगे। सातवें में एक ही हो, एक ही बंध, हाँ बंध विच्छित्ति होकर गया है, तो जिसकी जितनी विच्छित्ति हुई ना वो सारे अबंध में चली जाएगी, अबंध में होकर वहाँ सातवें में पहुँच गया। अभी 51 प्लस 4, पांचवे की 4 और छठे की 6, 10 और 61 हो जाएगी। यानी कैसे गिनना है? देखो पहले से चौथे में गया है तो चौथे वाली जो 10 विच्छित्ति होती है वो कब होती है? चौथे के बाद होती है, यानी चौथे में तो 10 का बंध है। जैसे मिथ्यात्व में 16 की है, यानी 16 बनते हैं मिथ्यात्व में, दूसरे वो 16 नहीं बंधेगी। सासादन में जो जीव है उसको वो 16 प्रकृति बंधेगी नहीं, जो डायरेक्ट ऊपर जाते हैं ना, क्योंकि वो पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसा तो चढ़ता नहीं है, डायरेक्ट पहले से चौथे में पहुंचा है, तो पहले तीन गुण स्थानों में जो कोई वहाँ बंधे योग्य थी तो वो तो वहाँ नहीं बंधेगी, यानी वो जो विच्छित्ति रूप हो गई है वो नहीं बंधेगी। उसमें से कितनी नए बंधेगी या कितनी बंधना छूट भी जाएगा वो तो बात आगे करेंगे। जैसे तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं है, चौथे गुणस्थान में वापस आयु का बंध होगा, वो तो हम क्रम से देखेंगे। अभी तो हमारा विच्छित्ति क्या है इसको समझना है। हाँ हाँ वो आई ना बात, ये उदाहरण आप कहते, उदाहरण कह दो कि विच्छित्ति चौथे में हुई क्यों कह रहे थे, पहले में हुई क्यों कह रहे, पहले में तो बंध रही है ना, तो बंध की विच्छित्ति क्यों कह रहे। तो कहते हम सब देवलाली में गए थे, तो कोई आया बम्बई से, कोई आया वहाँ औरंगाबाद से, तो बिछुड़े कहाँ हम, अरे देवलाली में तो साथ में थे, बिछुड़े कहाँ। बोलो भाई आप सांता क्रूज से आए सायन में, आप तारदेव से आए सायन में, आप सैंडर्स रोड से आए, तो बिछुड़े कहाँ हम, सायन में बिछुड़े। अरे सायन में तो इकट्ठे थे, सायन में तो मिले हैं, तो हम कहाँ बिछुड़े कहते, जहाँ मिले हैं वहीं पर बिछुड़े कहते। ये कहने की पद्धति है कि नहीं, हम जहाँ इकट्ठे हुए थे वहीं बिछुड़े। एक्चुअली बिछुड़ना कब होगा, जब आपने साइन छोड़ा तब बिछुड़े, जब आपने साइन छोड़कर आप रास्ते पर गए तभी हम कहेंगे बिछुड़े। ये कहने की पद्धति, इसको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं कहते, उसी को यहाँ का जो नाम है उसको उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद का है, वो जो आगे के पैराग्राफ में आएगी बात ये, क्योंकि वो शब्द वहाँ लिखेंगे तब हम पढ़ेंगे। ये कथन पद्धति का फेर है। देखो अभी हम क्रम से जाएंगे। मिथ्या तो गुणस्थान में 16 प्रकृतियां बंध से विच्छित्ति रूप होती है। फिर मैं पढ़ रही हूँ, मिथ्या तो में तो इनका बंध है सासा दनादि, यानी दूसरा तीसरा चौथा सब ऊपर, ऊपर के गुणस्थानों में इनका बंध नहीं है। इनका यानी किसका, 16 प्रकृतियों का, वो कौन सी वो अभी आगे जाके देखेंगे। इसी तरह सर्वत्र विच्छित्ति का स्वरूप जानना, सासाधन में 25 प्रकृतियां विच्छित्ति रूप होती है, यानी सासाधन वाले को तो बनती है, सासाधन वाले को बनती है, यानी पहले वाले को भी बनती है और दूसरे वाले को भी बनती है, परंतु तीसरे चौथे ऊपर कहीं नहीं बन, है ना। जहाँ जिसकी विच्छित्ति है उसके नीचे गुणस्थानों में तो बनती है, वहां वो नहीं बनती। मिश्र में शून्य कहने से विच्छित्ति का अभाव है, यानी कोई विच्छित्ति रूप नहीं हुई, बंध तो चल रहा है यथा योग्य। असंयत में 10, देश संयत में 4, ये कौन कौन सी जब देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगी आपको। प्रमत्त में 6, अप्रमत्त में 1, अपूर्व करण के 7 भागों में से उसके अगर हम 7 भाग करेंगे इक्वल, तो पहले भाग में 2, यानी पहले भाग में वो बन रही है, दूसरे तीसरे वगैरह भागों में नहीं बंधेगी, तो ये 2 की विच्छित्ति हुई पहले भाग में। दूसरे से 5 भाग तक 0, यानी कहीं कोई विच्छित्ति नहीं हुई। छठवें भाग में 30 और सातवें भाग में 4। अनिवृत्तिकरण में 5, सूक्ष्म सांप्राय में 16, उपशांत मोह और क्षीण मोह में 0, यानी नास्ति, विच्छित्ति नहीं है, बंध है, वहां एक साता वेदिनी का बंध चल रहा है परंतु बंध की विच्छित्ति नहीं हुई है। संयोग केवली में 1, यानी वहां भी वो साता वेदिनी का बंध हो रहा था, संयोग में है अयोग में नहीं है, तो हम कहेंगे संयोगी में उसकी बंध विच्छित्ति हुई। तो संयोगी में बंध विच्छित्ति हुई, अयोगी में कितनी होगी बंध विच्छित्ति, वहां बंध ही नहीं है। हाँ हाँ, तो सभी प्रकृति बंध से विच्छिन्न हो गई संयोग के अंत में, तो अयोग केवल में बंध भी नहीं और विच्छित्ति भी नहीं है। वहां विच्छित्ति के कथन में 2 नए है जो अभी मैंने बात की थी। एक है उत्पादानुच्छेद, उत्पाद अनुच्छेद, और एक है अनुत्पाद अनुच्छेद। उत्पाद अनुच्छेद यानी जहां उसकी सत्ता है वहीं पर उसका अभाव कहेंगे, अनुत्पाद यानी जब नहीं रहेगा तब उसको कहेंगे अभाव हुआ, जब अभाव हो गया तब कहेंगे अभाव हो गया, जब है तब अभाव नहीं कहेंगे। ये 2 नए आते हैं। देखो वहां उत्पाद अनुच्छेद का नाम द्रव्यार्थिक नए है, यानी वो किस एंगल से हम बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा ना कहाँ बिछुड़े, जहां मिले वहीं पर बिछुड़े कहने की पद्धति, तो उत्पाद अनुच्छेद नाम द्रव्यार्थिक नय का है। इस नय के अभिप्राय से तो जहाँ अस्तित्व है वहीं पर विनाश कहते हैं, जो नहीं था तो विनाश क्या कहेंगे। यानी जहाँ अस्तित्व है उत्पाद रूप जहाँ है वहीं पर उसका विनाश कहते हैं, क्योंकि जहाँ अस्तित्व ही नहीं है वहाँ बुद्धि में कैसे आए। इस नय की अपेक्षा बात करें, जब बुद्धि में नहीं आएगा तब वचन से अगोचर होने पर अभाव है इस तरह का व्यवहार कैसे किया जा सकता है। अभाव कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि अभाव को जानने वाला सम्यक ज्ञान नहीं है, प्रमाण नहीं है। प्रमाण है वे अस्तित्व रूप वस्तु ही को जानते हैं, उनकी नास्तित्व रूप वस्तु में कैसी प्रवृत्ति होगी। यदि उनकी नास्तित्व रूप वस्तु में भी प्रवृत्ति हो जाए तो गर्दभ के सिंह नास्तित्व रूप है, उनमें भी सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति होगी, परंतु वह तो बनता नहीं। ये दृष्टांत देके समझा रहे। इसलिए जहाँ अस्तित्व पाया जाए वहीं पर नास्तित्व कहना योग्य है। ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है, किसी अपेक्षा से बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि दूसरा भी नय है और दोनों ही नये सम्यक ज्ञान के अंश है। नहीं तो एक ने एक पक्ष पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरे, चलो वाद शुरू हो गया, उसकी बात नहीं। नये से वस्तु को समझना आवश्यक है। कथन भी किस नये से होता है उसकी बात करके अगर समझेंगे तो वस्तु स्वरूप जानने में सरल हो जाएगा। पुनश्च अनुत्पाद अनुच्छेद नाम पर्यायार्थिक नय कहा। अनुत्पाद, वहां उत्पाद कहा यानी अस्तित्व, यहाँ अनुत्पाद यानी नास्ती हो गई, तब कहेंगे वो बिछुड़े। जब एक दूसरे से सेपरेट होने पर कहेंगे वो बिछुड़ गए। इस नय के अभिप्राय से जहाँ सत्व न हो वहीं पर अभाव कहते हैं।
सत्व
यानी सत्ता, क्योंकि सद्भाव के होते हुए अभाव का विरोध है। पुनश्च सद्भाव के निषेध बिना अभाव होता नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कर्मों का नाश नहीं है, क्योंकि घाती अघाती कर्म सर्वत्र नहीं पाए जाते। यानी अभाव भी पाया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कर्मों का अभाव होकर जीव सिद्ध हो जाता है, तो अभाव तो वस्तु है वो पाया जाता है। पुनश्च सद्भाव है वह अभाव रूप नहीं है, क्योंकि सद्भाव का और अभाव का परस्पर विरोध है। जहाँ सद्भाव है जहाँ उत्पाद है वहाँ व्यय उसी का व्यय नहीं है। इसलिए जहाँ नास्तित्व पाया जाए वहीं पर नास्तित्व कहना योग्य। जब नास्तित्व हो गया तब कहेंगे, जब बंधन नहीं रहा तब कहेंगे विच्युति हुई। अब जहाँ पर है तभी वहीं पर विच्युति कह रहे हो तो कहेंगे वो द्रव्यार्थिक नहीं का कथन। कथन में डिफरेंस क्यों आता है? वो कहते जब बंध नहीं होगा तब कहो बंध की विच्युति, जब है तब क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए पहले वो किस नये से कथन है उसकी बात बता रहे। स्यादवादवत में दोनों नये अविरोधी है। क्या कहा? स्यादवाद का अर्थ क्या होता है माधवी? स्याद यानी कथन, किसी अपेक्षा, किसी वाद यानी कथन, किसी अपेक्षा से ने अपेक्षित जो कथन होता है उसमें दोनों नये अविरोधी है। वो विरोध नहीं है, अपनी अपनी अपेक्षा से बात करने का अलग अलग तरीका है, कथन पद्धति है। सर्वथा भेद से कथन करने को पर्यायार्थिक नहीं कहेंगे। पर्यायार्थिक ने उस पर्याय रूप से परिणमित हो गया है उसको यहाँ पर्यायार्थिक कहा, क्योंकि वो व्यय रूप हो गया, नास्तिक रूप हो गया, तब उसको पर्यायार्थिक कहा। यानी वहाँ बंध का अभाव हो गया है तब मिथ्यात्व का बंध पहले में है, अस्थि रूप है, और दूसरे गुणस्थान में वो नास्तित्व हुआ। बंध का अभाव इस अपेक्षा से कहेंगे तो कब हुआ, तो दूसरे में हुआ कहेंगे, पर्यायार्थिक नहीं के, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी नास्तित्व यानी अभाव है वहीं पर अभाव कहेंगे। जहाँ वो पर्याय में वो अभाव हो गया है तभी उसको कहना, ये पर्यायार्थिक नहीं। पर्यायार्थिक के अनेक अलग अलग अर्थ होते हैं। द्रव्यार्थिक नहीं ना, वो तो उसका सद्भाव है, जहाँ हो रहा है वहीं पर उसका अभाव कह देना, ये पद्धति है ना। जहाँ अस्तित्व है उसी का अभाव हो गया कहेंगे, यदि था जो है ही नहीं उसका अभाव क्या है, क्या होगा? वो है इसलिए बताया, वो नई की पद्धति है, ये कथन पद्धति है। जहाँ है वहीं पर उसका अभाव कहना यही अपेक्षा है। हाँ, उसी को यहाँ उत्पाद अनुच्छेद कहा, इसलिए उसको केवल स्पेसिफिक नाम देके बताया। इसलिए यहाँ विचित्य कथन में द्रव्यार्थिक नए रूप उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा कथन है। कह दिया ना, ये जो उत्पाद अनुच्छेद है वो द्रव्यार्थिक नए रूप है। उत्पाद अर्थ विद्यमान अस्तित्व, उसका अनुच्छेद अर्थात दूर होना जिसमें नहीं है, ऐसा द्रव्यार्थिक नहीं है। इस तरह इस नए की अपेक्षा अपने अपने गुणस्थान के अंतिम समय में विच्छित की कही, यानी उस गुणस्थान में उसका बंध है। अंतिम समय में विच्छित कही है, इसका अर्थ है उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं। अंतिम समय का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि पहले से कहाँ कहाँ जाता है उसको अंतिम समय, वैसा नहीं ले, क्योंकि पहले से दूसरे में जाता ही नहीं है। तो पहले का अंतिम समय कैसा कहेंगे 16 की विच्छित के लिए? इसलिए पहले में सर्वत्र उसका बंध है, ऊपर कहीं भी नहीं है, उसको कहेंगे पहले के अंतिम समय। ये कथन का तात्पर्य समझना आवश्यक है। पुनश्च यदि पर्यायार्थिक न कहे तो उस अंतिम समय के पश्चात जो अनंतर समय हो वहाँ उन प्रकृतियों का नाश कहते हैं। अंतिम समय का अनंतर यानी अभी दूसरे गुणस्थान में कहना पड़ेगा नाश हो गया, उस पर्यायार्थिक न से कहेंगे तो। अब यहाँ सर्वत्र द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा ही लगा के कथन करेंगे, नहीं तो आप कहेंगे किस नए से बात कर रहे हैं, क्या कहने हैं। पहले उन्होंने क्लियर कर दिया, यहाँ उत्पाद अनुच्छेद की बात कहेंगे, जिस गुणस्थान में बंद है उसी गुणस्थान तक वो बंद है, ऊपर कहीं नहीं है तो कहेंगे उस गुणस्थान में उसके बंद की विच्छित हुई। इतनी क्लैरिटी हो गई है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? हाँ, जैसे अभी ये दृष्टांत देंगे तो और समझ में आएगा। लौकिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि कोई पुरुष एक शहर में साथ थे, जैसे हमें सायन में सब साथ है, हम देवलाली में सब साथ है, उनमें से एक पुरुष अन्य शहर गया, वहां उसे पूछा कि तुम कहाँ बिछुड़ गए, तब उसने कहा कि मैं अमुक शहर में बिछुड़ गया। अभी हमने सायन की बात की है, कहाँ बिछुड़े तो सायन में बिछुड़े, जहां उनका संयोग था वही बिछुड़ना कहा। वैसे यहाँ भी विच्छित्ति का स्वरूप जानना। अभी और ज्यादा ज्यादा समझ में आए ना, पहले थोड़ा थोड़ा समझ में आता था तेजल। यह तो द्रव्यार्थिक नय का अभिप्राय है। पुनश्च उसी पुरुष ने पूछने पर ऐसा कहा, मैं अमुक शहर को छोड़कर इस शहर में आया, तब उनसे बिछुड़ गया। वहां तो हम साथ में थे, जब मैं यहाँ आया तब बिछुड़ गया। इस तरह इस कथन में जहाँ उसके संयोग का अभाव हुआ वहीं पर बिछुड़ना कहा, मैंने पर्याय में जब वो अभाव रूप हो गया तब उसको बिछुड़ना कहा। उस तरह अबंध में बंध का अभाव जानना यहाँ पर्यायार्थिक नय का अभिप्राय है। यानी प्रत्येक गुणस्थान में जहाँ अबंध कहते बंध का अभाव जहाँ है उसी को वहाँ पर अबंध कह दिया। अब इनके नाम देखेंगे, ये उत्पाद अनुच्छेद अनुत्पाद अनुच्छेद वो तो यहाँ ही खत्म हो गया, बस इतना ही। यहाँ तो हमने जो संख्या देखी 16, 25, 0 वगैरह वगैरह, उनके नाम बताएंगे। रोज रोज सुनेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। हाँ, अब उन्हीं विच्छित्ति रूप प्रकृतियों के नाम 8 गाथाओं द्वारा कहते हैं। 95 नंबर की गाथा, मिच्छत हुंड संधा संपत्ते यक्षथावरादावं सुमतियं वियलिंदी निरयदु निरयाउगं मिच्छे मिथ्यात्वहुंडषण्ढा संप्राप्तैकाक्षस्थावरातपः सूक्ष्मत्रयं विकलेन्द्रियं निरयद्विनिरयायुष्कम्। मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्त रूपाटिका सहन, कौन से 4 नाम बताए नरीन भाई? कुंडक क्या? हाँ, असंप्राप्त रूपाटिका सहन। पहले हमने संस्थान और सहनन देखा था, यहाँ छठे नंबर का संस्थान और छठे नंबर का सहनन है। मिथ्यात्व में ही मिथ्यात्व प्रकृति बनती है, ऊपर कहीं भी नहीं बनती। तो मिथ्यात्व बोलो
बोलो आपको पूरा
मुंडक संस्थान, तीसरी बात नपुसक वेद, और चौथा असंप्राप्त असुरुपाटिका, ऐसा उसका नाम है एक्चुअल असंप्राप्त। तो संप्राप्ता कहना, असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहन।
अभी सबको संस्थान के नाम और संगन के नाम याद कराने के आगे कुछ काम नहीं होगा। छह छह नाम है, कौन बता पाएगा कि संस्थान कितने हैं और कौन कौन से हैं? आश्विन भाई हाँ बोलो
शुरू से पहले
ऊपर से। अरे कहा है क्या ना भांग हाँ। वो अटक रहे ना तो उनको नहीं बोलने नहीं उनको 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 सब रुकाते हैं। बोलो बोलो बोलो
हाँ। समचक्रस्त संस्थान, जगरोत परिमंडल, साति, कुब्जक, वामन और हुंडक संस्थान।
आप बोलो
हाँ।
ये चौथा नंबर का कौन सा था
ना? पहले कुब्जक ना, पहले कुब्जक फिर वामन,
कुब्जक हाँ
फिर वामन।
अब पहला कौन सा था मंदिर? तीसरा मिली हाँ, दूसरा छठा। अभी ऐसा याद करना हाँ, नहीं तो उल्टे बोलना। बहुत अच्छा, ये सबको याद हो गया। अभी अरविंद अरविंद भाई बताना चाहते थे हाँ, ऊपर से नीचे
बहुत।
अभी आपने थोड़ा सा ऐसा बोला सम चतुरस्त्र संस्थान,
सम
सम ऐसा बोलना चाहिए,
पूर्ण पूर्ण बोला, सम नहीं सम, सम चतुरस्त्र,
क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी अपना सही होना चाहिए, नाराज नहीं होना है। अभी कौन सा रह गया? सहनन। सहनन कौन बताना चाहेगा? सब ये कब से तैयार है हाँ बोलो
हाँ। हो गया एक हाँ। दूसरा वज्र नाराज सहन।
बोले नहीं, कोई नहीं बोले, मैं हाथ जोड़ता हूँ।
नाराज सहन अर्ध नाराज सहन अभी दो ही रह गए
दिव्या में नाम
के लिख और असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहन।
दिव्याबेन बता
रही है असंप्राप्त असुरुपाटिका, यानी असंप्राप्ता सुरुपाटिका। आप बोलो फिर सभी हाँ। वज्र नारद हाँ 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 असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहन। बहुत अच्छा।
अभी कौन डॉक्टर बोलेंगे?
हाँ
उल्टा उल्टा
हाँ। बहुत अच्छा हाँ। इस तरह ही हमने संस्थान और सहननों के नाम देखे। आपको क्या आएगा उसमें से? संस्थान
दोनों दोनों
दोनों बताएंगे। बहुत
बहुत
हाँ बिल्कुल ट्राई करना हाँ। संस्थान हाँ
एक मिनट रुको बराबर है स्वाति तक आई आप आगे के तीन बोलो। बात करने से कुछ नहीं याद आने वाला, ध्यान यहाँ दो। मिली के साथ कभी मत बैठो, बिल्कुल नहीं बोलने का। यहाँ जो चल रही वो बात चलने दो, बीच में आपस में कोई एक दूसरे का शिक्षक भी मत बनो और शिष्य भी मत बनो। यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स टू। ये बात कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, बोलूंगा तो बोलने वाला खोटा, और जो आपस में बड़े बड़े थे वो बहुत साधु है। अभी इसको बोल रहे हैं तो आपको अटेंड करना चाहिए, वो क्या बोल रही है, कौन सी मिस्टेक कर रही है या सही बोल रही है, ये तरीका नहीं है सीखने का। हाँ बोलो बेटा।
बहुत अच्छा।
देखो ये कब कब आती है और इतना अच्छा बोलती है,
ये नए शब्द है ना सभी, इसीलिए बारंबार कहना उसको,
ये इसलिए याद करने। यहाँ उन्होंने बताया छठा छठा, यानी सवर्ण में भी छठा और संस्थान में भी छठा, तो छठा क्या होता है?
ये तो आपको आसान हो इसलिए मैं तरीके बता रही हूँ इसमें, परंतु ये छठा मालूम नहीं होगा तो हम कहने से कुछ नहीं होगा
और याद भी नहीं होगा।
तो हमने चार कौन से देखे अमोल? मिथ्या तो गुणस्थान की 16 प्रकृति हम देखने जा रहे हैं, उसमें से चार देखी हमने, मिथ्या तो चार प्रकृतियां कौन सी बंदे की विकसित हुई ये हमने पढ़ा था। हाँ तो उसमें फिर संस्थान और सहनन की बात आई थी, उसमें 6 नंबर का संस्थान भी देखा था, 6 नंबर का सहनन भी देखा था, और भी 2 प्रकृतियां देखी थी। माधी आपको याद है मिथ्यात्व? नहीं, देखो अभी कभी भी क्रम से याद करना है, पढ़ो पुस्तक में पढ़ के बोलो आप अमोल। हाँ हाँ त्रिपाठिका सहन बस चार आपको बताने हैं, फिर से बोलो। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? बंद विच्छित, बहुत अच्छा। 16 बंद विच्छित होती है, उसमें से 4 हमने देखी, कौन सी 4 देखी नितिन भाई? क्या हुंडक? हाँ हुंडक संस्थान, नपुसक वेद और असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहन। कल में आई बात बोलो, प्राप्ता श्रुपाटिका सहन। हाँ हाँ ये 4 देखिए, अभी आगे पढ़ेंगे।
एक मिनट सुशीला को बोलना।
हाँ सुशीला बेन बोलो। प्राप्ता असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहन, 3 भेद करो ना, असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहन। ओरिजिनल पुस्तक में तो श्रुपाटिका सहन इतना ही लिया लिखा था, मैंने हर जगह असंप्राप्त डाला, नहीं तो कि हम उस श्रुपाटिका पहले का भूल ही जाएंगे। ख्याल में शॉर्ट में कहें असंप्राप्त श्रुपाटिका, यानी वो जो हड्डियां जो है पहले वाले जो वज्र वगैरह वो कैसे कैसे है, हड्डियों की मजबूती जो है वज्र जैसे है, वज्र का वेष्टन है, नारा चने उसमें तो संधियों में खिले है वो खिलित है, अभी ये कैसे हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर केवल बंधन से बंधी हुई है, वो तो सरकती है एक दूसरे के ऊपर, मूव होती है वो, उसके जॉइंट एक दूसरे में फिक्स नहीं है, अलग अलग जन्नी ज्वाइंट कहो ये ज्वाइंट कहो क्या है, हड्डियाँ बस सेपरेट है और वो नसों से यानी मसल्स से टेंडन से बंधी हुई है। संस्थान इरेगुलर भी होता है और कैसा भी जैसा कहेंगे बेढ़ वैसा कोई आकार है उसको भी, क्योंकि मनुष्यों की भी बातें होगी, हुंडक संस्थान मनुष्यों में भी पाया जाएगा, 6 संस्थान मनुष्यों में भी होंगे। हाँ अब आगे बढ़ेंगे, 4 हमने देखे प्रकृतियां, अब आगे देखना है एकेंद्रिय स्थावर आतप, ये 3 एक साथ याद करना, कौन से 3? हाँ एकेंद्रिय स्थावर और आतप, उसके आगे के 3 सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, बोलो तेजल।
सूक्ष्म अपर्याप्त
तो आतप यानी आतप प्रकृति किसको कहना, ये जो सूर्य विमान है वहाँ के जो पृथ्वी का एक जीव है बादल पृथ्वी का एक जीव, तो उनमें आतप यानी तेज सहित वो प्रकाश भी है और उसमें उष्णता भी है, ऐसा शरीर जिनके है उसको आतप प्रकृति के कारण है ऐसा कहेंगे। अग्नि में उष्णता है वो आतप के कारण नहीं है, वो उष्णता उनके औदारिक शरीर के जो स्पर्श गुण की वहाँ पर वैसी पर्याय है, परंतु आतप नाम वैसा वो उसमें तेज भी है ना, चमक भी है वैसी, तो ये आतप प्रकृति कहते हैं। उद्योत नाम की एक प्रकृति वो आगे चल के आई है दूसरे गुणस्थान में, तो वो तो कैसे ऐसा है ना, उष्णता वाला नहीं है, शांत है, जैसे चंद्रबिंब का है या जुगनू का शरीर है या अन्य चमकीले जो कुछ मच्छी वगैरह ऐसी मछली आती है, तो उसको कहेंगे उद्योत नाम कर्म के उदय से वो शरीर की वैसे रचना होती है। तो हमने देखे थे एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये छह नाम बताने हैं आपको, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। छह नाम कौन कहेंगे? हाँ बोलो बाबा। हाँ एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, आतप, हाँ सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, क्रम से हमें याद रखना अच्छा है। हाँ छह नाम कौन बताएंगे? नैन्सी भाई आप बताएंगे, पढ़ के बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ साधारण, दिव्या भी ना बोलो। हाँ एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, किसी लगन बोलो। हाँ आपको पहले से बोलो, मिथ्यात्व से लेकर पहले हमने चार देखी थी और अभी छह देखी है। हाँ एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। अरविंद भाई आप बोलेंगे, पहले चार भी बोलना है। हाँ बराबर है, साधारण, बहुत अच्छा। ये हमने अभी तक कितनी देखी? दस देखी ना, पहली चार देखी और अभी कितनी हुई? दस हो गई, अभी कितनी रहेगी? छह रहेगी। हाँ देखो, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये तो आसान है ना। एकेंद्रिय संबंधी तो हमने छह देखी, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये तीन और देखी और तीन रह गई। अब नरक संबंधी है, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु। नरक द्विक हो गए ना, नरक, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी दोनों को नरक द्विक कहते हैं, और नरकायु क्योंकि ये द्विक वाली वो नाम कर्म की प्रकृति है और नरकायु सेपरेट है, इसलिए नरकायु अलग है।
यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि पहले चार तो हमें याद करने और वो चार का एक ग्रुप हमने किया,
चार और छह का कर दिया,
और छह में एकेंद्रिय संबंधी के छह हैं और आगे वाले विकलत्रय के तीन हैं
और बाकी नरक के तीन
हैं, नरक से संबंधित ऐसे तीन हैं। ये जब हम ऐसा डिवीजन करते हैं तो याद होने में आसान हो जाता है, इसलिए वो क्रम से ऐसा ही याद करेंगे।
पहले हमने चार देखे, कौन से चार माध्यम? मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुसक वेद, त्रिपाठिका सेना। फिर एक इंद्रिय संबंधी छह बोले लक्ष्मी। हाँ उसके बाद विकलत्रय संबंधी, हाँ द्विंद्रिय, तीनद्रिय, उसका अर्थ क्या है? द्विंद्रिय जाति, तीनद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, ये नाम कर्म के भेद चल रहे। हाँ सुशीला, हाँ नरक गत्यानुपूर्वी, गति के साथ गत्यानुपूर्वी लगाना नरक का, ये तीन सब बोलो। नलिन भाई, हाँ कुंडक संस्थान आगे, एक इंद्रिय नहीं, विशेष भाई बोलो। हाँ आतप, फिर देखो देखो बादर क्यों नहीं लेना, बादर तो पंचेंद्रिय के साथ भी बनती है, यहाँ स्थावर प्रकृति यहीं तक बनी है। हाँ सूक्ष्म साधारण, हाँ द्विंद्रिय तिंद्रिय चतुरी और नरक गति अनुपूर्वी और नरकाई। देखो ये ऐसी प्रकृतियां ली कि मोक्ष अशुभ जो है वो पहले में पहले बंधना रुक जाती है ना, इसके आगे बंधेगी तो कौन सी पंचेंद्रिय बंधेगी, अभी एकेंद्रीय भी नहीं बनेगी, द्विंद्रीय भी नहीं बनेगी, तीनद्रीय भी नहीं बनेगी, चतुरिंद्रीय भी यहीं पर सारी है और नरक भी नहीं बनेगी, परंतु एकेंद्रीय संबंधी शुभ है, वह है शुभ प्रकृति, परंतु जो एकेंद्रीय पर्याय बांध रहे हैं उसके साथ किसी को आतप भी बनेगी, यश कीर्ति भी बनेगी। हाँ एकेंद्रीय के साथ कुछ शुभ प्रकृतियाँ भी बनती है, परंतु वो बाधा एकेंद्रियों के ही थे, उसको पहला ग्रुप में लिया और बाद में सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण ले लिया। ये जो है ना इसमें से हाँ सब अशुभ ही है बराबर, हाँ तब वैसे है शुभ परंतु एक इंद्रिय संबंधी है, एक इंद्रिय के साथ ही बनती है वो, तो इसलिए उसका बंध भी रुक जाता है वहाँ पर।
यहाँ मेजोरिटी अशुभ प्रकृतियाँ हैं।
16 के 16 कौन बताएगा, आप बताइए मेरे को, हाँ बोलो, हाँ हाँ न कुछ, हाँ बहुत अच्छा, हाँ हाँ आतक आतक, हाँ 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 पहले नरक गति के नर नर बहुत अच्छा, ये 16 की बंदे बोलो मिली भाई बोलो, हाँ एक बार बार सुनने से याद हो जाता है। देखो हम यहाँ हमने देखा ना अभी
तुम नलिन भाई को पूछते नहीं हो, नाराज हो गए
अभी बताते बताते इनको बताए ना, हाँ क्या रह गया सब हो
गया। देखो सभी को असंप्राप्ता श्रुपाटी का बोलना है, असंप्राप्ता या तो असंप्राप्त अश्रुपाटी का बोलो, वो बेटर एक ही रखे ना, असंप्राप्ता श्रुपाटी का बहुत आसान है।
एक बार वो स्पष्ट शब्द उच्चारने की और बोलने की आदत हो जाएगी ना, यानी समझना भी आवश्यक है, जैसे गत्यानुपूर्वी नरक गत्यानुपूर्वी कहना नहीं नहीं गत्यानुपूर्वी अनुपूर्वी शब्द है, गति के आगे अनुपूर्वी लगाना गत्यानुपूर्वी, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के तो अंग्रेजी मीडियम से आए हो और ये हिंदी बोलना भी कठिन है, तो ये तो और भी
अच्छी मीडियम से
कोई बात नहीं, अगर हम बार बार सुनते हैं तो कुछ भी बात सुनने से हम बोलने भी लगते हैं।
तो कथा सुना ना,
कथा सुनी है ये बहुत याद कर करके थक गए अभी, जो हम सुनते हैं वही बोलते हैं। देखो मेडिकल का भी नियम है, कोई बोल नहीं सकता ना, बच्चे बोलते नहीं है, तो पहले में पहले हम टेस्ट करते कि वो सुन सकते कि नहीं, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या, तो जो हम उनके साथ बोलते हैं वो सुन सुन कर वो बोलने लगते हैं। तो पूना में हम शिविर करने जाते थे 97-98 के आसपास, साल भर में तो 3-4 शिविर करते थे, दो दो महीने में एक एक बार 10-10 दिन का, तो वहाँ यही बात हम बताते थे कि स्वाध्याय करना और बार बार करने से हमें वो शब्द ख्याल में आते हैं, बोलते हैं सुनते हैं तो हमें उसका अर्थ भी ख्याल में आता है, क्योंकि हम कुछ नहीं याद रहता है, कुछ नहीं समझते, ऐसे कहते ना एक बार सुनते तो क्या नहीं क्या हमने सुना, ये बहुत हार्ड है, हमारे लेवल की बात नहीं, ऐसा करने लगते। तो वहाँ मैंने एक कथा सुनाई, یعنی ان کو جو میں نے بتایا تھا وہ آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. تو ہمارے تو کوئی لڑکا نہیں ہے, دو لڑکیاں ہیں, اس لیے سوچا کہ ہم ایک لڑکا گود لے لیں. تب تک تو ہم عمل کو نہیں جان دیتے ہیں, دوسری کو لے لیتے ہیں, بہو بھی مل جاتی اور لڑکا بھی مل جاتا. تو ہم گئے ایک اناتھالے میں, گئے آرفنیج میں, اور بہت سارے بچے تھے کہ ہم نے ایسا نقی کیا تھا ایک چھوٹا بچہ لے کے آئیں گے اپنے گھر. تو ہمیں ایک بچہ پسند آیا تو ہم نے نقی کیا اس کو گود لے لیں گے. ایک ڈیفیکلٹی تھی,
تین مہینے کا تھا.
ہاں ہاں, دو مہینے کا ہی تھا, دو ڈھائی مہینے کا. تو ایک ڈیفیکلٹی تھی. کیا ڈیفیکلٹی تھی نینسی بھائی؟ وہ مدراسی بچہ تھا. تو ہم نے کیا نقی کیا کہ ایک ٹیچر لائیں گے گھر میں مدراسی بھاشا سکھانے والا, چھ مہینے ہم مدراسی کا ابھیاس کریں گے, بعد میں وہ بچے کو لائیں گے. تو ہم نے صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں؟ ارے تو وہ آپ کے گھر میں لاتے تو وہ مراٹھی سیکھ جاتا, ایسا کہتے آپ؟
نہیں, تو اس لیکچر میں ایک سماج سیوک آئی تھی.
ہاں, وہ تو بعد کی بات نا.
وہ اچھی ہے نا,
وہ اچھی, وہی کی امپورٹنٹ ہے. تو رات کے 10:30 بج گئے, کیونکہ ہمارے سارے لیکچر وغیرہ ہوتے تھے 9:15 بجے تک. تو جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں ایک مہیلا آئی, یہاں کی بمبئی کی, اور ویل ایجوکیٹڈ, اور سماج کاریہ میں بہت نام تھا,
یعنی دیگمبر سماج میں بہت ریناؤنڈ, فور موسٹ لیڈی. دو کے کان ایک دم کھڑے ہو گئے. تو وہ آ کے پوچھی, ہاں بولو.
تو ہم سے آپ کو پوچھنا ہے, بولو کیا مطلب, آپ اتنے آئے ہو بمبئی سے اتنا سیکھنے کے لیے, کوئی بات نہیں. بولے وہ مدراسی بچے کا کیا ہوا؟
آپ نے گود لیا کہ نہیں؟
کہنے کا پرویژن کیا تھا کہ جو بچہ ہمارے گھر میں جنم لیتا ہے ہم اس کے ساتھ جس بھاشا میں بات کرتے وہ سیکھ جاتا ہے. تو اس کو ایسا سچمچ لگا کہ ہم جا کے گود لینے والے تھے. مدراسی بچے کا کیا ہوا؟ ہم نے بولا ارے باپ رے, یہ سارا کہنے کا پرویژن ہی خیال میں نہیں آیا ان کے.
یعنی آپ کا کہنے کا پرویژن ایسا ہے کہ چاندانی کے دو پتر ہوتے ہیں, ایک برہمن کے یہاں اچھرتا ہے اور ایک چاندانی کے گھر میں رہتے ہیں, وہ تو دارو سے نہاتا ہے, اس کا ارتھ کیا؟ ساری گندی باتیں وہ سیکھ جاتے ہیں. کہاں جیسے اس کے وہاں بچے ماں باپ کو سکھائیں گے, ویسے ہم روزانہ یہ یاد کریں گے. کون سے پچھتی کے پہلے گنستان کے 16 جو نام ہیں, تو آج نہیں کل نہیں پرسو, لکھ کے رکھنا ہاتھ میں, جب بھی ٹائم ملے دیکھنا, پھر جیب میں رکھنا, پھر یاد کرنا, نہیں آتا ہے دیکھنا پھر جیب میں رکھنا. کبھی بھی کل شام تک تو سب کو یاد ہونا چاہیے, ہوگا بھی اس میں کیا,
ابھی ہو گیا نا, دو پانچ جن کے تو ابھی یاد ہو گیا.
ہاں ڈاکٹر صاحب بولنا صاحب.
ہاں بولو. نہ پوچھ سکے ہاں, دوسرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ نام بتا دیں. تو نرگتی, نرگتیا نوپوری, نرکائی, اس طرح سے آپ کھول کر من میں رکھنا کہ نرک سمبندھی چین ہے, وکلترے کی چین ہے, ایک اندری کی چھ ہے اور پہلی چار. تو یہ آسان ایک طریقہ بتا دیا آپ کو کیسے یاد کرنا. آگے ذرا پڑھ لیتے دیکھو, پھر پڑھوں گی میں شروع سے 95 کی ٹیکا. متھیاتو ہنلک سنستھان نپسک وید اسمپراپت تروپاٹیکا سہنن ایکینیہ ستھاور آتپ سوکشم اپریاپت سادھارن وکلترے تین دویندریہ تیندریہ چتریندریہ. جب آپ کہیں گے نا 16 نام تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں, وکل اندریہ تین کے ڈائریکٹ تین بتا دیں گے. نرک گتی, نرک گتیانوپوروی, نرک دوک اور نرکایو, ان 16 پرکرتیوں کے بند کا کارن متھیاتو ہی کا ادے ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ کیوں بنتی ہے؟ متھیاتو کے ادے میں ہی بنتی ہے. اس لیے یہ پرکرتیاں मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत समय में विक्षिप्ति रूप हुई, क्या अनंत अनुबंधी के उदय रूप उदय में नहीं बनती? यदि उनके भी उदय में बनती तो दूसरे गुणस्थान में भी बननी चाहिए थी। इसलिए इनका बंध यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में है, वो मात्र मिथ्यात्व के उदय में ही बनती है। जो प्रकृतियाँ दूसरे गुणस्थान में बनती है ना, अभी 25 बंध विक्षिप्ति होने वाली है, वो पहले में भी बनती है, दूसरे में भी बनती है, तो उसको कहेंगे मिथ्यात्व से भी बनती है अनंतानुबंधी के लिए। उसका कारण हम जब उसकी बात आएगी तब देखेंगे। देखो, ये प्रकृतियां मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत समय में विक्षिप्ति रूप हुई। ये पहले गुणस्थान की विक्षिप्ति ख्याल में आई सबके। अब हम दूसरे ये गाथा पढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे। तो कल जब हम मंगलाचरण के बाद पहले में पहले 16 प्रकृतियों को फिर से याद करके फिर आगे बढ़ेंगे। 16 है और आगे की 25 आने वाली है। 16 और 25 हुई तो वो मोक्ष मार्ग तो आधा पार कर दिया ना हमने। हाँ, शुरू हो गया, इन्हें वो बंद आधा पार कर दिया। हाँ, देखो 96 नंबर की गाथा। विदेय गुणे अणी दुभगति संधान संहित चौकम दुग्गमणिचीरीचम तिरिय दुकुजोवतिरियाव। द्वितीय गुणे अनस्यानत्रय दुर्भगत्रय संस्थान संहति चतुष्कम दुर्गमनस्त्रीनीचम तिरिय द्विकोद्योततिर्यगायुः। देखो, इसमें एक आसान तरीका बताती हूँ। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का बंध यहाँ है, आगे कहीं पर भी नहीं, उदय भी है बंध भी है, तो यहाँ उसके बंध की विक्षिप्ति होने वाली है। तो अनंतानुबंधी के 4, यही पर 3 निद्रा लेना है। 5 निद्रा में से जो गहरी वाली निद्रा वो यहाँ पर कह रही, कौन सी? ज्ञान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रचरा प्रचरा। 4 कषाय हुए अनंतानुबंधी, 4 3 निद्रा। उसके बाद दुर्भग दुस्वर अनादेय, इन्होंने यहाँ पहले लिया था, हमने याद किया था, बाद में किया था। फिर अभी हमने जो संस्थान और सहनन याद किए ना, बीच वाले 4 लोग, 6 तो हमने ऊपर लिए, कौन से 6? मुंडक संस्थान और असंप्राप्त सुप्राटिका सहन। यहाँ पर संस्थान में निग्रोध परिमंडल साधिक उपजक वामन देना, और सहनन में पहला छोड़ के वज्र नाराज नाराज अर्ध नाराज और कीलित ले। 4 कषाय लिए, 3 निद्रा लिए, दुर्भग दुष्वर अना दे लिया, और फिर क्या क्या लिया? 4 संस्थान, 4 सहनन। उसके बाद अप्रशस्त विहाय गति त्रिवेद और नीच गति, अभी अलग अलग है फिर भी उसको याद रखेंगे 3 को एक साथ। और तिर्यंच संबंधी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योग, क्योंकि उद्योग जो प्रकृति है वो तिर्यंच गति वालों में ही पाई जाती है। जहाँ तिर्यंच गति का बंध का विच्छेद हुआ, उद्योग का भी बंध का विच्छेद हो जाता, यही दूसरे गुणस्थान तक बनती, ऊपर कहीं भी नहीं बनती। अब इसको हम कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान से तुझे न पालो सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो। तेजा